नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में विषाक्त भोजन खाने से 3 महिलाओं की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्रदेश के 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी पंचायत विकास सूचकांक में वैशाली जिले की राजा पाकर पंचायत समिति शीर्ष स्थान पर। और पटना में आज से 3 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का होगा आयोजन। 7 राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार अपने अपने प्रांत की कलाओं का करेंगे प्रदर्शन। और समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में विषाक्त भोजन खाने से 13 महिलाओं के बीमार पड़ने और 3 महिलाओं की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आयोग ने प्रभावित महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट और मृतक महिलाओं के परिजनों को दी गई सहायता से संबंधित जानकारी भी तलब की है। आयोग ने कहा है कि आसरा गृह में हुई यह घटना मानवाधिकार उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। आयोग ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है। प्रदेश की 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर बाद तक नतीजे आने की संभावना है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन से राजद के 3 और भाकपा माले के 1 उम्मीदवार हैं। एनडीए खेमे से भाजपा 2 सीट पर, जबकि जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1-1 सीट पर चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने 2, जबकि जन स्वराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। उपचुनाव में जदयू से अभिषेक झा, राजद से गोपी किशन और जन स्वराज पार्टी से विनायक गौतम प्रमुख उम्मीदवार हैं। उपचुनाव को लेकर 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 9 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से ग्रामीण कार्य विभाग की 8,833 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6,199 योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी करेंगे। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी पंचायत विकास सूचकांक में वैशाली जिले की राजा पाकर पंचायत समिति ने प्रदेश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर नालंदा जिले की परवलपुर पंचायत समिति, जबकि तीसरे स्थान पर शेखपुरा जिले की शेखोपुर पंचायत समिति है। ग्राम स्तर पर पंचायत विकास सूचकांक में जहानाबाद की मखदुमपुर प्रखंड की पुनहरा ग्राम पंचायत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन पंचायतों का मूल्यांकन स्थानीय सतत विकास लक्ष्य, गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव, स्वास्थ्य, बाल हितैषी, जल और हरियाली जैसे 9 विषयों के आधार पर किया गया है। राज्य की सभी पंचायतों में दुग्ध और मत्स्य समिति बनेगी। जिला स्तरीय संयुक्त कार्य समिति को इसके जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर नाबार्ड, NTTP और NFTP की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों और किसानों तक पहुंचाना है। वर्तमान में सक्रिय मत्स्य समितियों की संख्या 466 और दुग्ध उत्पादक समितियों की संख्या लगभग 8,300 है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निरीक्षण के लिए कल से 2 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत हुई। पहले दिन 42,000 से अधिक योजनाओं का निरीक्षण हुआ। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जांच के लिए जिला स्तर पर कमिटी बनाई गई है। निरीक्षण के दौरान 85% योजनाएं पूर्ण रूप से चालू पाई गईं। जो योजनाएं असंतोषजनक पाई गईं या जिनमें मरम्मती की आवश्यकता थी उसकी रिपोर्ट पेयजल ऐप पर अपलोड कर दी गई है और आज से इनकी मरम्मत शुरू हो जाएगी। भारतमाला परियोजना के तहत कैमूर में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार परियोजना के निर्माण के लिए 1.5 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के प्रस्ताव पर प्रारंभिक सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। साथ ही जिले में भू अर्जन की आवश्यक प्रक्रिया भी पथ निर्माण विभाग द्वारा पूरी हो गई है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद से गुजरेगा। बिहार में इसकी लंबाई 161 किलोमीटर होगी। नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की समीक्षा बैठक के दौरान बिहार की दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना की समीक्षा की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने केंद्र सरकार को दोनों योजनाओं की अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उद्यमशीलता सेल बनाए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों को उद्यमी बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की एकेडमिक सीनेट बैठक के दौरान राज्यपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी 1-2 महीनों में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के बाद महाविद्यालयों में भी उद्यमशीलता सेल बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में आज से 24 नवंबर तक इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। कार्यक्रम में 7 राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार जुटेंगे और अपने अपने प्रांत की लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर तापस सामंतरे ने बताया कि कार्यक्रम में बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा के कलाकार भाग लेंगे।
एक बहुत बड़ा सिग्नेचर प्रोग्राम है इंद्रधनुष कार्यक्रम, जो कि पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता, उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र प्रयागराज एवं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग का द्वारा मिलके एक सतरंगी कार्यक्रम अनुष्ठित होने जा रहा है आपका बिहार का पटना शहर में, जो पटना शहर सारा भारत में संस्कृति के लिए जो परिचित है उसको 7 रंग का इंद्रधनुष का संस्कृति रंग में रंगाइत करने के लिए इधर में हम भारत के 7 राज्यों के कलाकारों को लेके इंद्रधनुष कार्यक्रम आयोजन होना जा रही है।
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से डेंगू के 89 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 40 मरीज पटना से हैं, वहीं पटना से चिकनगुनिया के 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हाजीपुर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में हाजीपुर देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया। इधर पटना का AQI 238 से 330 के बीच दर्ज किया गया। पटना की हवा में धूलकण की मात्रा सामान्य से 6 गुना अधिक दर्ज की गई है। राज्य के अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत अठनिया दियारा में एक घर में आग लग जाने से माँ बेटी और बेटा की झुलसकर मौत हो गई। वहीं गृह स्वामी गौतम यादव को मायागंज अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात घर में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। मामले की जांच जारी है। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के मणिअप्पा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन सभी युवकों ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और दो की मौत हो गई। इधर जिला प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण कई रेलगाड़ियों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना गया पटना मेमू, गया किउल पैसेंजर, जमालपुर सहरसा पैसेंजर, गया झाझा पैसेंजर समेत 17 ट्रेन 24 नवंबर से 7 जनवरी तक रद्द रहेगी। 9 ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आज से 5 जनवरी तक मगध एक्सप्रेस का आंशिक समापन पटना जंक्शन पर होगा। सिवान जिले के जीवीनगर थाना क्षेत्र के चाचो पाली गांव स्थित एक पानी की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री के बॉयलर में दबकर दो श्रमिकों की मौत हो गई। अररिया जिले के सिमराह थाना क्षेत्र अंतर्गत औराही पूरब महादलित बस्ती में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में दो दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साइबर अपराधियों ने मधुबनी जिले के भच्ची गांव निवासी एक व्यक्ति को जेल भेजने की धमकी देकर 11 लाख रुपए ठग लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बोधगया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा NH के उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार ने मंत्री के हवाले से लिखा है, बिहार की सड़क परियोजनाएं 5 लाख करोड़ से पूरी होंगी। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहटा एयरपोर्ट रनवे विस्तार में तोड़ने होंगे 441 स्ट्रक्चर। दैनिक भास्कर लिखता है, समस्याग्रस्त शिक्षक ट्रांसफर के लिए 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन करेंगे। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, अडानी पर अमेरिका ने लगाया घूस देने का आरोप, स्वजन समेत 6 लोगों पर मामला दायर। आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुयाना संसद सत्र के संबोधन को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत विस्तारवाद नहीं वैश्विक विकास के पक्ष में। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, बंधुआ मजदूरों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार तैयार करे प्रस्ताव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में विषाक्त भोजन खाने से 3 महिलाओं की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्रदेश के 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी पंचायत विकास सूचकांक में वैशाली जिले की राजापाकर पंचायत समिति शीर्ष स्थान पर। और पटना में आज से 3 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का होगा आयोजन। 7 राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार अपने अपने प्रांत की कलाओं का करेंगे प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।